आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।
आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी से शुरुआत कर रहे हैं जो एक हरियाणा के किसान की है। उसने बहुत मेहनत से बासमती चावल उगाया और फसल जहाज पर लोड भी हो गई, लेकिन फिर वो जहाज समंदर में ही अटक गया।
हाँ, और क्यों अटका? क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर एक युद्ध चल रहा था। यानी इस चर्चा का हमारा मकसद यही समझना है कि दुनिया के किसी दूर कोने का तनाव कैसे सीधा हमारी रसोई और बचत पर असर डालता है।
सही कहा आपने।
और देखा जाए तो इस किसान का जहाज रुकना कोई एक अकेली घटना नहीं है। अगर हम डेटा पर गौर करें तो भारत का 75% बासमती निर्यात सीधे मिडिल ईस्ट जाता है।
वेट, 75%? यानी लगभग 60 लाख टन?
बिल्कुल, 60 लाख टन। ये आंकड़ा साफ बताता है कि आज की इस ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी थाली का एक एक दाना दुनिया के नक्शे से जुड़ा है। यहाँ कोई भी अकेला नहीं है।
और इस तार के बीच में सबसे बड़ी कड़ी है वो हर्मुज जल डुमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं।
हाँ, वही समंदर का वो संकरा रास्ता जहाँ से दुनिया का करीब 20-27% तेल गुजरता है।
और जब वहाँ तनाव बढ़ता है ना, तो जहाजों का जो वॉर रिस्क इंश्योरेंस है वो सीधे 400% तक उछल जाता है।
एकदम सही।
यानी इसको ऐसे समझें कि शहर का सबसे मुख्य हाईवे अचानक बंद हो जाए या फिर वहां से गुजरने का टोल 100 गुना बढ़ जाए तो ट्रकों का आना रुकेगा और रातों रात शहर में सब्जियों से लेकर हर चीज की कमी हो जाएगी
और कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और यही हाईवे वाला उदाहरण ना भारत की अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल फिट बैठता है। हम अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं।
85% बहुत बड़ा नंबर है यार,
है ना? ये रोजाना करीब 4.2 मिलियन बैरल होता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल $80 प्रति बैरल के पार जाता है तो सरकार की जो एलपीजी और फर्टिलाइजर यानी खाद की सब्सिडी है उस पर करीब 300 से 500 अरब रुपए का भारी अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
एक सेकेंड यार, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। तेल का खाद से क्या लेना देना? गाड़ी में तो पेट्रोल डीजल डलता है, खेतों में तो नहीं ना?
सीधा कनेक्शन है। असल में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक साथ ऊपर नीचे होते हैं।
अच्छा, तो मतलब दोनों लिंक्ड हैं?
बिल्कुल। और उसी गैस का इस्तेमाल यूरिया और बाकी खाद बनाने में होता है। तो तेल महंगा मतलब गैस महंगी, और गैस महंगी तो खाद महंगी।
ओहो।
नतीजा ये कि खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने वाली हर चीज का दाम अपने आप बढ़ जाता है।
यानी मिडिल ईस्ट सिर्फ हमारी गाड़ियों का ईंधन नहीं तय कर रहा बल्कि खाने का बिल भी तय कर रहा है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ तेल की नहीं है ना, रोजगार की भी है।
सही पकड़ा आपने। करीब 90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं, जो कि कुल विदेशी कामगारों का लगभग 50% है।
और हमारा जो टोटल रेमिटेंस है यानी जो पैसा बाहर से भारत आता था उसका 30% हिस्सा वहीं से आता है।
वहीं तो वहाँ किसी भी संकट का मतलब है यहाँ भारत में अचानक लाखों परिवारों की आय का रुक जाना।
लेकिन एक मिनट, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। जब तेल महंगा होता है तो अपना रुपया तो कमजोर होता है ना?
हाँ, होता है।
तो क्या बाहर से डॉलर या दिरहम भेजने वाले ग्लोबल भारतीयों को इसका फायदा नहीं मिलता? उन्हें तो $1 के बदले ज्यादा रुपए मिलेंगे।
तकनीकी रूप से देखें तो उन्हें ज्यादा रुपए जरूर मिलते हैं, पर वो फायदा ना असल जिंदगी में टिकता नहीं है।
वेट, कैसे?
इसको ऐसे समझिए कि जब तेल महंगा होता है तो हमारा आयात बिल इतना बढ़ जाता है कि हर $10 प्रति बैरल की तेजी पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का 0.4 से 0.5% तक बढ़ जाता है।
यानी आसान भाषा में कहें तो देश जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा बाहर खर्च करने लगता है।
बिल्कुल यही होता है। और रुपया कमजोर होने से बाहर से आने वाली हर चीज वैसे ही महंगी हो जाती है, तो जो घरेलू महंगाई है वो उस रेमिटेंस वाले छोटे से फायदे को पूरी तरह निगल जाती है।
मतलब जेब में 10 रुपए ज्यादा आए लेकिन लोकल खर्चा 20 रुपए बढ़ गया।
एकदम सटीक बात।
तो आम इंसान तो हर तरफ से पिस रहा है यार, तो क्या हम बस ऐसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ देखकर डरते रहेंगे? क्या इस निर्भरता का कोई स्थायी समाधान नहीं है?
नहीं, समाधान जरूर तलाशे जा रहे हैं। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने इसको इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा सुरक्षा चुनौती कहा है।
इतिहास की सबसे बड़ी?
हाँ, और इसी डर ने ना एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। अब सोलर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं रही, ये देशों के लिए एक रणनीतिक जरूरत बन गई है।
ताकि विदेशी तेल पर जो ये हमारी जानलेवा निर्भरता है ये खत्म हो सके।
सही बात है। और इसे हम डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण कह सकते हैं, जैसे अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। और ये सिर्फ ऊर्जा में नहीं बल्कि व्यापार में भी हो रहा है।
जैसे वो जनवरी 2026 वाली भारत EU फ्री ट्रेड डील है ना?
हाँ, वही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये डील दुनिया के करीब 2 अरब लोगों और ग्लोबल GDP के 25% हिस्से को कवर करती है।
कमाल का आंकड़ा है ये।
बिल्कुल, और इसका मुख्य मकसद यही है कि यूरोपियन यूनियन के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी साझा की जाए और नए व्यापारिक रास्ते खोले जाएं, ताकि हम बस किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर पूरी तरह निर्भर ना रहे।
तो कुल मिलाकर आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि जब भी दुनिया में कहीं कोई ग्लोबल संकट आता है तो हमारी रसोई गैस, पेट्रोल और ग्रोसरी के बिल तो बहुत तेजी है बढ़ते हैं, पर आम इंसान की आय वहीं की वहीं रहती है।
सही कहा आपने, ये फासला हमारी सारी बचत को बिगाड़ देता है। और उस ग्लोबल सप्लाई चेन में सबसे नीचे बैठा आम आदमी या फिर वो हरियाणा का किसान इन झटकों के सामने सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है।
इस पूरी चर्चा ने एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में डाल दिया है, क्योंकि ये वैश्विक झटके अब हमें सोलर और रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर बहुत तेजी से धकेल रहे हैं। तो क्या आने वाले भविष्य में हमारी रसोई विदेशी तेल के बजाय पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा से चलेगी?
ये सोचना वाकई दिलचस्प है।
हाँ, क्या एक दिन सच में ऐसा आएगा जब हरियाणा का वो किसान बिना किसी समंदरी रास्ते के ब्लॉक होने की चिंता किए अपनी फसल पूरी दुनिया में भेज सकेगा और हम इन विदेशी आर्थिक झटकों से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे?
इसी विचारणीय प्रश्न के साथ आज का ये गहन अध्ययन यहीं समाप्त होता है।
आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो।